ओम शांति। हम सब के बीच में प्यारे बाप दादा की अमूल्य रतन आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर सविता बहन जी उपस्थित है, सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। बाबा ने आपको डबल डॉक्टर, जिस्मानी डॉक्टर, रूहानी डॉक्टर, डबल डॉक्टर बनाया है। साथ में आपने अपनी जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया, जिसको 40 इयर्स हुए हैं। 26 इयर्स से आपने अपनी जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित की हुई है। डॉक्टर के नाते आपने शुरू शुरू में माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में आपने समर्पित रूप में 10 साल ईश्वरीय सेवाएं दी हुई है। उसके पश्चात संस्था की मुख्य प्रशासिका हम सब की प्यारी दादी प्रकाशमणि जी, जिनकी हेल्थ का आप स्वयं देखभाल करते थे, वो आपका एक बहुत अच्छा दादी जी के अंग संग रह करके सेवा देने का सौभाग्य मिला हुआ था। साथ में हमारी 19 जितनी विंग है, जिसमें महिला विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, आप स्पेशल राजयोगा टीचर भी हैं, और देश विदेश में आप भ्रमण करके बाबा का मैसेज पहुंचाए हैं, जिनकी अनेक आत्माओं की दुआएं आपके साथ प्राप्त है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कई बार संबोधित करते रहते हैं। तैसी बाबा की अमूल्य रतन आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर सविता बहन के स्वमुख से ज्ञान रतन से झोली भरेंगे। आज का आपका विषय है स्व चेकिंग की विधि।
ओम शांति। हम सब संगम युग पर पुरुषार्थी हैं। संपूर्ण बनने का, बाप समान बनने का हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, और बाबा कहता है कि समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र होनी चाहिए। अगर तीव्र गति होगी तो ही समय पर हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे, नहीं तो फिर आज की मुरली में भी था या कल की मुरली में भी था ये बात कि फिर पछताना पड़ेगा कि समय हमारे हाथ से निकल गया, हमें जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। तो स्व चेकिंग हमारे पुरुषार्थ को तीव्र बनाने की ही विधि है। बाबा ने हमें सबसे सहज विधि दी है स्व चेकिंग की, अपना चार्ट देखना। समय प्रति समय मुरली में भी हम चार्ट के बारे में सुनते रहते हैं, और जब भी भट्टियां होती हैं सेवा केंद्रों पर या मधुबन में तो भी इस विषय को विशेष अंडरलाइन कराया जाता है कि रात को सोने से पहले सारे दिन में बाबा की श्रीमद प्रमाण हम कितना चले, क्या उसमें कमी रह गई, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की अपनी विशेष दिनचर्या है। तो अगर हम उस विशेष दिनचर्या के प्रमाण अमृत वेले से रात्रि तक चलते हैं तो अपने आप ही तीव्र पुरुषार्थ हो जाता है। लेकिन उस दिनचर्या में अगर नीचे ऊपर होता है, अगर हमारे पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं तो फिर अंतर आ जाता है। तो सभी भाई बहने चार्ट लिखते हैं, चलो लिखते तो कम है, मैं नहीं समझती कि सभी लिखते होंगे, थोड़ा समय उमंग होता है तो लिखते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे वो सिर्फ चेकिंग पर आ जाता है। तो पूछना चाहूंगी मैं कि कोई ऐसे हैं जो लिखते हैं इस सभा में, तो हाथ उठाएं। बहुत कम, गिनती कर सकते हैं, सिर्फ 8-10 हाथ उठे हैं। अच्छा, लिखते नहीं हैं, लेकिन सोने से पहले रोज अपनी चेकिंग जरूर करते हैं, सारे दिन में मन वाणी कर्म कैसे रहे, दिनचर्या श्रीमद् प्रमाण रही, सोने से पहले चेकिंग करते हैं अपनी, वो हाथ उठाएं, वो काफी है, क्योंकि चेकिंग करना फिर भी सहज है, वो तो सारे दिन की चेकिंग कुछ मिनटों में हो जाती है, ज्यादा समय भी नहीं लगता है, लेकिन वो चेकिंग करने के बाद सिर्फ चेकिंग करने तक नहीं छोड़ देना है, लेकिन चेंज करना है। वो बाबा कहता है चेक करना है फिर चेंज होना है। चेक करने का ये भी मतलब नहीं है कि अरे आज तो मैंने इतनी गलतियां कर दी, तो हम दिल शिकस्त हो जाएं, निराश हो जाएं, या थोड़े दिन चेकिंग कर रहे हैं लगातार तो पता चला हर दिन ही वो गलती हो रही है जो नहीं करनी चाहिए, तो फिर इतना ज्यादा दिल शिकस्त हो रहे हैं कि योगी नहीं लग रहा है, तो ये चेकिंग सही चेकिंग नहीं है। चेकिंग करने का मतलब दिल शिकस्त होना नहीं, लेकिन जब हम बाबा को दे देते हैं तो बाबा हमारी हिम्मत पर हमें मदद करते हैं, तो बाबा के सहयोग से हम अपने उन कमजोर संस्कारों पर विजय पा लेते हैं, भले हमें थोड़ा समय लगता है, ऐसे नहीं है बाबा को भी पता है कि संस्कार एकदम परिवर्तन हो जाएंगे, जो इतने कड़े संस्कार जन्मों के बने हुए हैं तभी बाबा हमें समय देते हैं, तो इसीलिए हमें दिल शिकस्त नहीं होना है, लेकिन अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, और जितना हम हिम्मत से वो करते रहते हैं धीरे धीरे वो संस्कार कमजोर होते होते हमेशा के लिए फिर विदाई ले लेते हैं। अमृत वेले से हमारी दिनचर्या शुरू होती है, तो मेरा अमृत वेला विधि पूर्वक रहा, सबसे पहली चेकिंग ये बाबा ने हमें विधि दी है, पहला संकल्प होना चाहिए मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई हूँ, मैं अवतरित आत्मा हूँ, ये ब्राह्मण जन्म धर्म स्थापना के लिए अवतरित जन्म है, और इसके साथ ही बाबा को हमें गुड मॉर्निंग कहना है। बाबा को गुड मॉर्निंग किया, फिर बाबा के प्यार का हम अनुभव करें, अमृत वेले जो बाबा का स्नेह अनुभव होता है, जो प्यार के सागर का स्वरूप होता है, जो बाबा के वरदानों का स्वरूप होता है, वो सारा दिन में फिर हम अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर जैसे आज की मुरली में भी था, माया किसमें सबसे ज्यादा विघ्न डालती है, याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है, लड़ाई चलती है, तो हम सोचते तो हैं कि हमारा अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए, हम बाबा से सर्व खजानों से अपने को अमृत वेले भर लें, और ना सिर्फ हम स्वयं भरपूर हो जाएं, लेकिन सर्व आत्माओं को भी हम उन खजानों का दान करें, लेकिन माया का भी सबसे पावरफुल समय वही होता है, तो माया आती है निद्रा के रूप में, या तो उठते ही नहीं हैं, या फिर सोचते हैं चलो अभी तो 4 नहीं बजे हैं, 4 बजने में थोड़ा टाइम है, अलार्म लगाया है या जो भी बाबा ने उठा दिया, तो अब 4 बजे उठेंगे, फिर सीधा कब उठे, 5 बजे, पूरा अमृत वेला वो 5 मिनट में पूरा हो जाता है, तो ऐसा निद्रा योग तो नहीं करते हैं अमृत वेले। तो माया का ये रूप सवेरे बहुत पावरफुल होता है, और दूसरा होता है कई बार बहानेबाजी मन में चलती है, रात को बहुत थके हुए थे, बहुत देर से सोए, रात को नींद ही नहीं आई, इतनी देर से नींद आई, सिर में दर्द हो रहा था, मतलब जो भी शरीर के प्रॉब्लम्स या शरीर में दर्द था, तो सुबह उठने में वो संकल्प सबसे पहले आ जाएंगे, माया उस रूप में आएगी, आज ऐसा था इसलिए आप समझ गए, हंसते हैं कई भाई बहने, हाँ आज सो जाते हैं, कल से अमृत वेला हम करेंगे। तो ये चेकिंग बहुत जरूरी है कि कहीं माया इस रूप में हमें कमजोर तो नहीं बनाती है। चाहिए कि माया इस रूप में हमें अमृत वेले कमजोर तो नहीं बना देती। बाबा ने कहा है कि अमृत वेले आत्मा अपनी संपन्न स्थिति का अनुभव करे, अपने अनादि स्वरूप का अनुभव करे। अनादि स्वरूप शुद्ध है, पवित्र है, सर्वशक्ति संपन्न है, और जो बाबा के गुण हैं, शांति का सागर है बाबा, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है, वो स्वयं अनुभव करते हुए हम अन्य सभी आत्माओं के प्रति भी वो वाइब्रेशन फैलाएं वातावरण। और वो अमृत वेले का समय प्रकृति भी हमें सहयोग देती है, क्योंकि प्रकृति भी सात्विक स्थिति में होती है। तो जो भी हम अनुभव करना चाहें बाबा से हम सहज अनुभव कर सकते हैं, समय का वरदान है। तो उस तरह से मेरा अमृत वेला सफल हुआ। फिर अमृत वेले के बाद हम बाबा से मुरली सुनते हैं। तो ब्राह्मणों का नियम है रोज मुरली जो प्रातः काल की चलती है वो मुरली नियम पूर्वक क्लास में आकर के, सेवा केंद्र पर क्लास में आकर के हमें सुनना है। तो हम सेवा केंद्र में क्लास पर आकर मुरली सुनते हैं तो उसकी जो प्राप्ति है, उसकी जो अनुभूति है, क्योंकि सेवा केंद्र का वातावरण जो होता है वो हमें एकाग्रता में भी मदद करता है और संगठन का भी उसमें सहयोग होता है। लेकिन यहाँ भी माया आ सकती है। आज तो बहुत साधन उपलब्ध हैं, आप कहीं भी मुरली सुन सकते हैं, टीवी पर भी मुरली सुन सकते हैं आप, इंटरनेट पर आ जाती है मुरली, आजकल व्हाट्सएप चलता है उस पर मुरली आ जाती है, उसमें भी मुरली सुन सकते हैं। सेंटर पर जाने की सुबह सुबह क्या जरूरत है। हाँ, आजकल तो ठंडी के दिन है, वैसे भी ठंड में बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस रूप में कहीं माया और पढ़ाई के समय हमारे सामने तो नहीं आती है। तो अगर हम कमजोर होते हैं का मतलब बाबा की श्रीमद प्रमा हम नहीं। तो फिर जिस विधि पूर्वक हमें मुरली सुननी चाहिए, स्वयं भगवान हमें परम धाम से पढ़ाने आते हैं। कोई गुरु संत महात्मा नहीं पढ़ा रहे, कोई रिवाजी आत्मा हमें नहीं पढ़ा रही है, कौन पढ़ा रहा है। और उस पढ़ाई की वैल्यू कितनी बड़ी है। बाबा ने कहा एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का है। आज भी बाबा ने कहा था विरला कोई ये व्यापार करे। दुनिया जो कमाई करती है वो है कौड़ियों के पीछे। आज की मुरली में बाबा ने ये बात कही, ये हीरे समान हमारा जन्म है और ये व्यापार हमें करना है, कौड़ियों के पीछे हमें इसे नहीं गंवाना है ना? तो यहाँ हम किस चीज को महत्व देते हैं। बाबा की पढ़ाई को हम इतना महत्व देते हैं कि ये हमारी अविनाशी कमाई है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम बाबा ने कहा है, या उसको साधारण समझ लेते हैं। बाबा तो मुरली में काफी बातें तो वो ही कहते हैं ना। ठीक है, एक आधी कोई पॉइंट नई होती है। हमने बहुत बाबा का ज्ञान समझ लिया है, सारी बातें तो समझ में आ गई हैं। अब रोज मुरली सुनने की क्या जरूरत है। ये माया की प्रवेशता इस रूप में होती है। तो दुनिया में भी जो लोग भक्ति पूजा पाठ करते हैं ना, वो भी नियम पूर्वक करते हैं, चाहे वो रोज वही प्रार्थना करते हैं। उनकी जो स्तुति होती है, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे या जो भी करेंगे, पाठ करेंगे, वो रोज वही पाठ करेंगे, लेकिन नियम होता है जरूर करेंगे। भले ही बाबा की मुरली वो होती है, लेकिन पूरी की पूरी वैसी नहीं होती है, रिपीट नहीं होती है। बाबा की मुरली में हर रोज कोई ना कोई ऐसी नई रियलाइजेशन की पॉइंट होती है हमारे लिए। और उस स्मृति से, उस विधि पूर्वक हम सुनते हैं तो वैसा का वैसा सारे दिन के कार्य व्यवहार में हमें उसे लाना सहज होता है। फिर केवल मुरली सुनना नहीं है, बाबा कहता है उसका मनन चिंतन भी होना चाहिए, उसकी गहराई में जाना चाहिए। बाबा ने ये बात कही, इसका कोई राज है। और अगर मैंने उसको रिपीट किया है, जब तक मैंने उसको रिवाइज नहीं किया तब तक वो ज्ञान मेरा अपना होगा ही नहीं। गाय जुगाली करती है तो उस भोजन को वो पचाती है। तो ज्ञान को बार बार स्मृति में लाना, बाबा ने जो कहा तो उस ज्ञान को अपना बनाना। तो उतनी एकाग्रता से, बाबा के प्यार से, उस वैल्यू से मैंने बाबा की मुरली सुनी, ये है चेकिंग। अगर इसमें कहीं कमी हुई, अब बुद्धि क्या होता है मुरली के समय, चलो नियम है, नियम तो पूरा करेंगे ही, कुछ भाई बहने हाँ हमारे जरूर मुरली में बिल्कुल पक्के होते हैं, चाहे कुछ हो जाए मुरली मिस नहीं करेंगे, सेंटर पर जरूर आएंगे। जैसे नेमीनाथ बाबा कहते हैं ना, जरूर हैं हम, लेकिन मुरली कैसे सुनते हैं, आधी सुनी आधा, कहीं कहीं बुद्धि गई, कभी बच्चों में बुद्धि गई, कभी ऑफिस में बुद्धि गई, कभी बिजनेस में बुद्धि गई, माताएं हैं तो खाना क्या पकेगा आज, उसमें बुद्धि गई, जो भी हरेक का जो काम होता है उसमें थोड़ा समय बुद्धि जाती है, थोड़ा समय बाबा की मुरली सुनी, फिर थोड़ा समय बुद्धि उसमें गई, फिर सारी मुरली पूरी हो गई, फिर उसी समय किसी ने पूछा आज बाबा ने क्या कहा, हाँ गेट के बाहर निकले मानो उन्होंने नहीं सुनी। तो बहुत जोर देना पड़ता है दिमाग पर, याद नहीं आती है। क्यों? पूरी एकाग्रता से सुनी ही नहीं तो मुरली कैसे याद रहेगी, मुरली मिस हो जाती है हमसे। फिर सारे दिन के कार्य व्यवहार में जब मुरली याद ही नहीं है, स्मृति में ही नहीं है, तो आप उसे ला पाएंगे? जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनती है, बिना स्मृति के स्थिति बन ही नहीं सकती है। और कईयों के साथ ऐसा होता है कि 2 घंटा तो चार्ज हो जाते हैं, मुरली सुनते हैं हाँ बिल्कुल पावरफुल स्थिति रहती है, लेकिन जैसे ही कारोबार में आते हैं तो कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं और वो जो पावर भरी वो धीरे धीरे खत्म होती है और फिर अपने पुराने स्वरूप में जो देह अभिमान का स्वरूप होता है वो इमर्ज होने लग जाता है। तो यहाँ भी स्व की चेकिंग चाहिए कि जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं सारा दिन तो मेरी कॉन्शियसनेस क्या रहती है। आज का दिन आपका कौन सा दिन है? आत्मिक स्मृति का दिन है ना, आत्मा के गुणों का अनुभव करना है आज के दिन, आत्मा अनुभूति करनी है। तो बाबा ने हमें ये बहुत अंडरलाइन कराया है कि कर्म करते हुए भी बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहो और कर्म योगी बनकर के कर्म करो। दूसरों के साथ संपर्क में भी जब आते हैं तो उन्हें भी आत्मिक स्वरूप से देखो, आत्मिक स्वरूप से उनके साथ कार्य व्यवहार में आओ। आत्मा भाई भाई हैं, ये अव्यक्त भाव हरेक आत्मा के प्रति रहना चाहिए, व्यक्त भाव से नहीं, लेकिन रूहानियत की स्थिति वाला मेरा कार्य व्यवहार। यही तो उनमें और हम ब्राह्मण आत्माओं में अंतर है, नहीं तो हम भी अज्ञानियों जैसे हो जाते हैं उनके साथ मिलकर। क्योंकि जब भी हम कार्य व्यवहार में बाहर जाते हैं तो बहुत अज्ञानियों से हमारा संबंध संपर्क होता है, तो मेरी दृष्टि वृत्ति उन आत्माओं के साथ कार्य व्यवहार के समय कैसी होती है। कल की मुरली भी थी हमारी, बाबा की अव्यक्त मुरली जो थी, पवित्रता की स्थिति क्या है, मनसा में आत्मिक भाई भाई की स्मृति हो और वाणी में मधुरता हो और कर्मणा में सदा नम्रता हो, निमित्त भाव और नम्रता हो। तो मेरे कार्य व्यवहार में वो रहा या मुझे देहाभिमान आ गया, मैं तो फलाना हूँ, मैं अफसर हूँ, या जो भी हम हैं, मैं इंचार्ज हूँ, या मैं जो भी हमारी हम जिन भी संपत्ति के मालिक हैं वो संपत्ति का भान है मुझे, या मैं ज्ञानी हूँ, कई प्रकार के देह अभिमान होते हैं जो दिन भर में हमारे इमर्ज हो सकते हैं। मैं एक विशेष आत्मा हूँ, ये विशेषताएं मेरे अंदर हैं। जो तो अगर हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं और दूसरों को भी यदि हम बॉडी के रूप में ही फिर देखने लगते हैं और वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं तो फिर माया चांस लेती है। अगर आप सोल कॉन्शियस होकर के आत्मिक स्थिति से अपना कार्य व्यवहार करते हैं तो बाबा साथ रहता है, बाबा के श्रीमत अनुसार मेरी दिनचर्या चल रही है और हमें महसूस होता है कि करण करावनहार बाबा हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र कर रहे हैं, मेरे तो सिर्फ हाथ चल रहे हैं, लेकिन करा कौन रहा है, बाबा करा रहा है। बहुत हल्कापन रहेगा, कोई भी जिम्मेवारी का काम हमारा होगा, कर्म योगी हैं तो बहुत हल्कापन रहेगा। लेकिन अगर हम भारी हो रहे हैं, हमें अशांति हो रही है, चिंता हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देह अभिमान में आकर के मैं अपना कार्य कर रही हूँ, ये चेकिंग चाहिए। मेरी स्थिति कैसी है सारे दिन के कार्य व्यवहार में, मेरी स्वस्थिति कैसी रही, क्या मेरी स्थिति बहुत हलचल में आ जाती है, जल्दी हलचल में आ जाती है, या अचल रहती है। अब परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होंगी ही, क्योंकि जैसे वातावरण में आज हम रह रहे हैं मेरे अनुकूल होंगी परिस्थितियां सारी, जैसा हम चाहते हैं वैसी होंगी नहीं होंगी। फिर मेरे कोई ऐसे बोल तो नहीं निकल जाते दूसरों के प्रति जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मेरे वचन सदा सुख देने वाले होने चाहिए, कड़वे वचन तो हम नहीं बोल जाते। तो ये चार्ट की जो हमारी चेकिंग है, कई बार हमें थोड़ा सूक्ष्म में जाना पड़ता है। मोटे रूप से हमें लगता है हम सही है ना, हम थोड़ी ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं इसीलिए फिर हमको करना पड़ता है। हम दूसरों को कई बार दोष देने लगते हैं, होता है नहीं होता है, उंगली हमेशा कई बार दूसरों की तरफ, अंतर्मुखी होने के बजाय जब हम बाह्य मुखी होते हैं तो स्व परिवर्तन के बजाय दूसरों के परिवर्तन की इच्छा करने लगते हैं, या स्व चिंतन के बजाय मन कहाँ चला जाता है, पर चिंतन में चला जाता है, दूसरों के चिंतन में, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। लेकिन श्रीमत क्या है? श्रीमत है मुझे कैसा होना चाहिए, बाबा ने मुझे ये सिखाया है। दूसरों के परिवर्तन की जिम्मेवारी मेरी नहीं, मेरे परिवर्तन की जिम्मेवारी मेरी है। इस परिस्थिति में भी मुझे कैसा होना चाहिए, और कहां भी अगर हमें संशय आता है कि मैं सही कर रही हूं या नहीं, तो बाबा कहता है फॉलो फादर। किसको फॉलो करना है? ब्रदर सिस्टर को फॉलो नहीं करना है। हाँ, ये भाई ऐसे कर रहे हैं, ये बहन ऐसे कर रही है, इतने साल पुराने हैं, इतने सालों से ज्ञान में चलते हैं, अभी भी देखो। हाँ, तो हम तो अभी नए हैं, अगर हमने किया तो उनको फॉलो करना है। हाँ, या निमित्त बहने भी, कई बार बाबा कहते हैं महारथी भी अगर कोई गलती करते हैं तो क्या समझो, वो उस समय परवर्ष है, वो महारथी नहीं है, वो भी माया के वर्ष है, लेकिन नंबर वन ब्रह्मा बाबा है। अभी तक जो संपूर्ण बने हैं वो ब्रह्मा बाबा हैं। तो बाबा ने श्रीमत दी है, बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो, बाबा ने इस परिस्थिति में क्या किया। कहीं भी लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी मुझे क्या करना है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, उलझन में हूँ, ये करूँ या ये करूँ, तो ब्रह्मा बाबा की जीवन देख लो। बाबा सदा समर्पित बुद्धि रहे, कभी भी बाबा ने अपने में मैंपन नहीं आने दिया, मैंपन का देह अभिमान अंश मात्र भी नहीं। सदा क्या कहा? मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ ना। इतनी बड़ी ऑल माइटी अथॉरिटी ने मुझे अपना रथ बनाया है, तो थोड़ा तो अभिमान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन बाबा ने वो अभिमान किया, तो बाबा को देखना है, बाबा ने कैसे अपने जीवन में ब्राह्मण जीवन की मर्यादा के अनुसार हर कदम उठाए। मुझे भी बाबा को फॉलो करते हुए चलना है। फिर हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय चेकिंग चाहिए कि मैंने बाबा की याद में भोजन किया। जो बाबा को भोग लगाकर खाया जाता है वही ब्रह्मा भोजन है। उसी भोजन में शक्ति भरती है और वो हमारे तन मन के क्लेश खत्म करता है। जैसा अन्न वैसा मन हम सिखाते हैं ना दूसरों को, तो मैंने उस मर्यादा का पालन किया, विधि पूर्वक भोजन खाया जो ब्राह्मण जीवन की विधि है, या भूल गए, भूख लग रही थी जल्दी जल्दी में, बस जैसे आया वैसे खा लिया, या कहीं बाहर जाना था, जो भी मेहमान आ गए, कई कारण बन सकते हैं कि हम खाते समय बाबा को भूल जाएं। ब्रह्मा बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं, जब मैं एक कौर मुंह में डालता हूँ तो बाबा को याद करता हूँ, लेकिन फिर याद भूल जाती है। मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है कि पूरा समय याद बनी रहे। या कई बार तो ऐसा होता है कि सब साथ ही टेबल पर मिलते हैं, खाने की टेबल पर, वैसे तो सब अपने अपने काम में लगे होते हैं, जब खाना खाने आए तो सब साथ में बैठे, तो फिर बाबा को याद करने की फुर्सत कहाँ है? फिर तो कहानियां होती है। तो नहीं, बाबा की याद में मुझे भोजन करना बहुत जरूरी है, उतना ही बात करें, उससे ज्यादा कोई भी व्यर्थ बातचीत हम खाने की टेबल पर नहीं करें। तो ब्रह्मा भोजन हम रोज करते हैं तो भी उससे बहुत शक्ति मिल जाती है हमें। और फिर रात को सोने की बात, सोने की जो विधि है उस विधि प्रमाण ही हम सोते हैं। कई भाई बहने कहते हैं कि रात को नींद ही नहीं आती है, तो बाबा कहता है नींद क्यों नहीं आती है, सारे दिन की चिंताएं उस समय बिस्तर पर जाकर करना शुरू कर देते हैं। इस विधि से सोना है या बाबा की याद में सोना है, बाबा के याद की गोदी में सोना है। तो बाबा को अपना चार्ट दे करके पूरे दिन का चार्ट मैंने चेक किया। और फिर जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाते थे, सुना होगा बाबा हमेशा अपने मन बुद्धि संस्कार आत्मा राजा है, ये जो कर्मेंद्रियां हैं कर्मचारी हैं, तो क्या आज सारे कर्मचारियों ने ऑर्डर प्रमाण काम किया, तो स्थूल तो छोड़ो लेकिन सबसे बड़ा हम किसको कहते हैं, चंचल है वो हमारा मन है। तो मन कंट्रोल में रहा या व्यर्थ संकल्पों में मन चला गया, छोटी छोटी बातों में बहुत व्यर्थ संकल्प मेरे चले, अशांति कहाँ अनुभव होती है, मन में ही तो अनुभव होती है ना। तो क्या मैंने फुल स्टॉप लगाया, और जिस विधि से फुल स्टॉप लगाना चाहिए मैं लगा पाई, या फुल स्टॉप लगाना चाहते थे लेकिन फिर भी मन क्वेश्चन मार्क्स में चला गया। व्यर्थ संकल्प खत्म ही नहीं होते हैं, और ज्यादा बड़ी बातें नहीं होती हैं व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प लाने वाली, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। तो सबसे ज्यादा महीन चेकिंग हमारे मन की चाहिए। और बाबा कहता है अगर अभी से बहुत काल का अभ्यास होगा तभी वो अंत में काम आएगा, नहीं तो अंत में जब विनाश का समय होगा और सारी परिस्थितियां खींचने वाली होंगी उस समय एक बाबा दूसरा ना कोई, मन इसमें टिक जाए। आज की मुरली में भी ये बात बाबा ने कही, सिर्फ एक बाबा से ही प्यार हो और कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। बाबा ने कहा आज की मुरली में ये प्यार आशिक माशुक जैसा है। तो जो सच्चा प्यार होता है तो मन उसी को ही याद करेगा, दूसरे को याद नहीं करेगा। तो आठ रतन ही हैं जो बाबा से ऐसा सच्चा प्यार करते हैं। और फिर बाबा ने कहा 108 रतन, ये था ना आज की मुरली में। तो मेरा मन टिक जाए एक सेकंड में, जहां मैं मन को टिकाना चाहूं, एकाग्र करना चाहूं, स्थित करना चाहूं बाबा की याद में, अगर मैं निराकारी स्थिति में परम धाम में बाबा को याद करना चाहती हूं तो मेरा मन निराकारी स्थिति में है। ऐसे नहीं एक संकल्प परम धाम में मैं हूं और दूसरा संकल्प फिर नीचे आ गई, फिर कोशिश करती हूं, फिर बड़ी मुश्किल से मन परम धाम में पहुंचता है, ये मन का कंट्रोल नहीं है। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, बाबा कहता है सारे दिन में स्वयं को भी फरिश्ता अनुभव करो, अन्य आत्माओं को भी फरिश्ता स्वरूप देखो। तो मैंने वो फरिश्ता स्वरूप देखा या आत्माओं की और भी बातें मुझे नजर आई, उनकी कमियां नजर आई, उनके अवगुण नजर आए। एक मुरली में बाबा ने कहा था काला कोयला भी है ना तो भी आप डायमंड देखो, देख सकते हैं इतना परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये करना है क्योंकि जैसे भगवान ने हम कैसे भी थे बाबा ने अपना बनाया, पतितों को पावन बनाने ही बाबा आता है और पतित दुनिया में आता है, ये नहीं सोचता है कि पावन लोग जहां होंगे वहीं मुझे जाना है। तो हम भी इस विश्व को परिवर्तन करने वाले बाबा के सहयोगी बच्चे हैं, और जब हम अन्य आत्माओं के प्रति इतना दृष्टिवृत्ति का परिवर्तन करते हैं कि जो नहीं दिखाई दे रहा उनका अनादि स्वरूप वही हम देखें, आत्मा तो दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन फिर भी हमें क्या देखना है, क्या देखना है, आत्मा को ही देखना है, आत्मा के गुणों को ही देखना है कि देखो अपने उस पवित्र स्वरूप में ये आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, तो उसका वही स्वरूप मुझे नजर आए। ये चेकिंग अपनी कि हर स्थिति में मन रहा सारे दिन में, बाबा ने जो हमें योग की अवस्थाएं बताई हैं, उन अवस्थाओं में हम कितना समय रह पाए, अपने मन को कितना एकाग्र कर पाए, मेरे मन पर कितना कंट्रोल मेरा रहा, या याद में मेरी युद्धि चलती रही। याद तो मन से ही करते हैं ना बाबा को, तो जरूर माया विघ्न डालती है, लेकिन मुझे तो निर्विघ्न बनना है ना। मेरी याद बाबा के साथ अटूट, एक रस और निरंतर बनती जाए, ये मेरा पुरुषार्थ है। ऐसे नहीं कि पहले मेरा योग बहुत अच्छा था, जब हम ज्ञान में आए तब तो बाबा से बहुत प्यार का अनुभव होता था, बहुत अच्छा, बाबा से हाँ एक मिनट में योग लग जाता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, अब तो योग लगता ही नहीं है, लगाने की कोशिश करते हैं तो भी योग नहीं लगता है। ऐसे बनना है या और मेरा योग सहज होता जाए, निरंतर होता जाए बाबा के साथ। तो ये चेकिंग कि मेरी योग की स्थिति कैसी है और उसमें मेरा मन कितना सहज एकाग्र हो जाता है, वो ज्वालामुखी योग की स्थिति हम कितना समय अनुभव करते हैं। तो अपने संपूर्ण स्वरूप को हम सामने रखें चेकिंग के लिए। जैसे हर इंसान क्या करता है, सारे दिन में अपने शरीर की चेकिंग करते हैं ना, कहीं भी बाहर जाएंगे तो पहले दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे, हाँ बाल ठीक ठाक हैं, कपड़े सब ठीक ठाक हैं, और पूरा ठीक करके और फिर बाहर निकलते हैं। तो ये तन की चेकिंग होती है, तन सही है या नहीं। ऐसे ही अपने संपूर्णता के दर्पण में, हाँ, या ज्ञान के दर्पण में अपने आप को देख लो। बाबा ने हमें कौन सा आईना दिया है, मैं आत्मा देव स्वरूप में कैसी थी, उस देवताई स्वरूप को सामने लाओ और उस स्वरूप को लेकर के अभी तक मुझ में क्या कमियां हैं। हाँ, मेरा वो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप है, उस मंजिल तक मुझे पहुंचना है। तो हम ये भी सोच सकते हैं, जब भी हम दर्पण के सामने खड़े होंगे, हम सिर्फ अपना वर्तमान स्वरूप नहीं देखेंगे, कौन से स्वरूप की चेकिंग करेंगे, अपने भविष्य देवताई स्वरूप को भी देखेंगे। और उस प्रमाण, जैसे अब बाहर निकलने के प्रमाण मेरे में क्या कमी है हम ठीक कर लेते हैं, तो उस प्रमाण मेरे में अभी क्या कमी है वो मुझे अटेंशन में ले आना है। कर सकते हैं ऐसा, तो कितना सहज पुरुषार्थ हो जाएगा। कि दर्पण के सामने तो कितनी बार हम खड़े होते होंगे दिन में, हाँ उतनी बार ही मैंने अपने भविष्य स्वरूप को देख लिया। बाबा कहते हैं दिन में कम से कम 8 बार अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करो। हाँ चलो 8 बार नहीं, 4 बार भी हमने किया तो मेरी स्थिति कैसी होगी, मन की स्थिति बिल्कुल श्रेष्ठ संपन्न स्थिति हो जाएगी। तो मेरा वो देवताई स्वरूप, फिर मेरा पूज्य स्वरूप, मेरा फरिश्ता स्वरूप, मेरा वो अनादि स्वरूप, वो स्वरूप मेरे चिंतन में बार बार आता रहे। तो यदि इस विधि से हम बाबा को रोज चार्ट देते हैं अपना, तो बहुत जल्दी जैसे बाबा हमें चाहते हैं हम संपन्नता की स्थिति को प्राप्त करेंगे। बाप समान स्थिति का अनुभव वर्तमान में रहते हुए भी हम करेंगे, भविष्य की बात तो है ही, भविष्य की प्रारब्ध तो है ही, लेकिन वर्तमान संगम युग के इस जीवन में भी हमें संपन्नता का अनुभव होगा। बाबा के साथ का हम पूरा पूरा अनुभव करते हुए संगम युग की प्रारब्ध का भी हम अनुभव करेंगे। ओम शांति। कमेंट्री करना, कमेंट्री से चेकिंग। अभी अपने आप को अपने आत्मिक स्वरूप में अनुभव करते हुए अपने वर्तमान पुरुषार्थ को देखें। मेरा जीवन कितना बाबा के श्रीमत प्रमाण मैं आत्मा चला रही हूँ। कौन कौन से ऐसे अभी भी पुराने संस्कार, कमजोरी के संस्कार, आलस्य या अलबेलेपन के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, सबसे पहले अपने स्मृति और वृत्ति को चेक करें। मेरी स्मृति, मेरी भावनाएं सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना है। श्रेष्ठ भावना है। या कभी कभी मेरी भावनाएं बदल जाती हैं, और यदि बदलती है तो क्या कारण बनता है। अपने आप को देखिए, किस आत्मा के प्रति आपकी भावना बहुत जल्दी बदल जाती है। जरूर कोई हिसाब किताब हो सकता है, लेकिन मुझे अपनी भावना को शुभ रखते हुए इसे समाप्त करना है। मेरी वृत्ति दृष्टि सारे दिन आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं। कहीं चेंज तो नहीं होती है। वृत्ति चंचल तो नहीं होती। और यदि होती है तो मुझे अपने देह अभिमान के इस अंश वंश को बाबा की याद से और आत्मिक स्मृति के अभ्यास से अपने अनादि पवित्र स्वरूप के अनुभव से समाप्त करना है, चेंज करना है। चेकिंग करें अपनी वाणी की, बाबा की श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। क्या मेरे वचन सदा ही इसी प्रमाण रहते हैं? देखिए अपने आप को, यदि नहीं है, कोई कमी है तो मुझे अटेंशन देना है। मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मुझे ब्राह्मण कुल का नाम बाला करना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है और उसका सबसे पहला माध्यम है बोल। मेरे बोल सदा सबको सुख देने वाले हों, बाबा के स्नेह का अनुभव कराने वाले हों, आत्माओं में हिम्मत और उमंग भरने वाले हों, ऐसे ही वचन मुझे बोलने हैं। अगर गलती से कोई ऐसे बोल निकल जाते हैं तो हम उनसे क्षमा मांग लें। और आगे के लिए अटेंशन रखें। अपनी दिनचर्या देखें, कहीं मन आलस्य के वश तो नहीं हो जाता है? तन की कोई बीमारी हो सकती है लेकिन मन यदि खुश है आत्मा स्वस्थ है तो तन की बीमारी तन की बीमारी भी विघ्न रूप नहीं है, बलिहारी मेरे इस अंतिम जन्म के इस शरीर की है, जिसने बाबा से मिलने लायक बनाया अनेक जन्म जन्मांतर की कमाई का भाग्य मुझे दिलाया है। मेरा ये शरीर जैसा भी है बहुत अमूल्य है, और मुझे अपने तन के कारण कभी भी अलबेला नहीं होना है। इस तन को भी प्यार से चलाना है, कभी भी पढ़ाई में मैं बहाना तो नहीं देती हूँ, ये पढ़ाई मेरे जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने वाली है। स्वयं भगवान मेरे टीचर हैं, पूरे कल्प में एक ही बार बाबा आते हैं और हमें इतना ऊंच और श्रेष्ठ बनाते हैं। मेरे मन में सदा एक बाबा के प्रति ही बाबा मेरा संसार है, मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरा है, ये भावना रहती है। एक बाप दूसरा न कोई, सर्व संबंधों का अनुभव मैं बाबा के साथ करती हूँ। बाबा को पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है, क्या मुझे ये अनुभव होता है या मेरी बुद्धि व्यक्ति वस्तुओं के आकर्षण में अभी भी जाती है? ये सब पुरानी दुनिया अब विनाश होने वाली है और मेरे साथ ये याद की अविनाशी कमाई ही जाएगी। ऐसा अनुभव बाबा के साथ सदा मेरा रहे। बाबा की याद बहुत सहज और शक्तिशाली स्थिति का अनुभव मुझे कराती रहे। ऐसे बाबा की श्रीमत के दर्पण में रोज अपने आप को देखते रहे कि कहाँ तक हम इस यात्रा के मंजिल के नजदीक हैं या दूर हैं। ॐ शान्तिः।